हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य मन में सोच रहा था, आज पहली बार मेरी गाड़ी में एक ऐसी लड़की बैठी है जिसे ना मुझसे बात करने में दिलचस्पी है ना मुझे देखने में, और यही बात उसे झलक की और खींचती चली जा रही थी। आखिर इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कौन सा राज छुपा है? फिलहाल जल्दी ही आदित्य ने गाड़ी एक अच्छी सी कॉफी शॉप के सामने सही तरीके से रोक दी थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, सामने सजी संवरी कॉफी शॉप को देखकर आदित्य ने झलक की ओर नजर डाली। झलक की आंखों के भाव पड़ते ही आदित्य तुरंत उसका मतलब समझ गया और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, एक्चुअली इस वक्त मुझे कॉफ़ी पीने का बड़ा मन हो रहा है, और अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई होप यू डोंट माइंड। वैसे भी सुना है कि यहाँ पर कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, तो क्यों ना एक साथ बैठकर कॉफ़ी पी ली जाए। आदित्य ने ये बात बिल्कुल फॉर्मल अंदाज में कही थी। झलक ने भी कोई नखरा नहीं किया और बिना कुछ कहे सीधा अंदर जाकर कॉफ़ी टेबल पर बैठ गई। अपने लिए उसने ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर कर दी, वहीं आदित्य ने उससे बिल्कुल उलट अपने लिए बढ़िया सी दूध वाली कॉफ़ी मंगवाई। आदित्य सामने बैठकर आराम से कॉफ़ी पीने लगा, जबकि झलक बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। दरअसल उसे अनामिका को ज्वाइन करना था, लेकिन कॉफ़ी शॉप साइड में काफ़ी दूर पड़ जाने की वजह से उसे लग नहीं रहा था कि वो टाइम पर पहुंच पाएगी। यही सोचकर उसने फटाफट फ़ोन निकाला और अनामिका को कॉल लगा दिया। उधर अनामिका पहले से ही अपने लिए कई सारी डायमंड रिंग्स और नेकलेस देख चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी सारी ज्वेलरी पैक करवाई और उन्हें गाड़ी में रखवाने के बाद झलक का फ़ोन पिक किया। झलक ने जल्दी जल्दी उसे बताया कि वो घर के लिए निकल जाए, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो टाइम पर वहां पहुंच पाएगी। अनामिका तुरंत बोली, तुम फिक्र मत करो, वैसे भी मैंने अपने और तुम्हारे दोनों के लिए शॉपिंग कर ली है, सो डोंट वरी। और हाँ, मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है, बस 10 से 15 करोड़ की ही थोड़ी सी ज्वेलरी ली है। मैंने कुछ खास नहीं लिया, इसलिए तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, ओके? और तुम्हारे लिए भी मैंने शॉपिंग की है। ये कहकर अनामिका ने झलक से आराम से आने को कहा और फ़ोन रख दिया। वहीं झलक कुछ देर तक फ़ोन की स्क्रीन को देखती रही और सोचने लगी। 10 से 15 करोड़, ये रकम आज उसके लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती थी, और एक वक्त था जब कुछ हज़ारों रुपए के लिए उसे न जाने क्या क्या सहना पड़ा था। इतना ही नहीं, अपने ही परिवार के सामने उसे रो रोकर मदद मांगनी पड़ी थी। कुछ हज़ारों रुपए उस वक्त उसके लिए कितनी मेहनत, कितना संघर्ष और कितनी अहमियत रखते थे, लेकिन आज 10-15 करोड़ भी उसके लिए कुछ नहीं थे। ये सब सोचते सोचते अचानक उसके चेहरे पर एक छोटी सी तिरछी मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट आदित्य की नज़रों से छिप नहीं सकी। उसने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, प्लीज़ बताइए, ऐसा क्या सोच रही हैं आप जो मुस्कुरा रही हैं? ज़रूर कोई बड़ी बात होगी, वैसे भी एक लड़की का यूं बिना वजह मुस्कुराना कोई मामूली बात तो होती नहीं है। ये कहते कहते आदित्य फटाफट अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने लगा। वो झलक से कुछ बातें शुरू करना चाहता था, लेकिन झलक ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। उसने बिना किसी इमोशन के चेहरा बनाए रखा और लगातार कॉफ़ी पीते हुए अपने फ़ोन को स्क्रॉल करती रही। तभी थोड़ी देर में वेटर बिल लेकर आ गया। आदित्य ने झलक की कॉफ़ी का भी बिल देने की कोशिश की, लेकिन झलक ने सख्ती से मना करते हुए कहा, मिस्टर राणा प्लीज़, भला आप मेरा बिल क्यों देंगे? कॉफ़ी मैंने पी है तो बिल भी मैं ही दूंगी, आई एल मैनेज्ड। ये कहकर झलक ने वेटर को पैसे दे दिए। झलक के पास कैश मौजूद था, उसकी कॉफ़ी का बिल 550 रुपये आया था, इसलिए उसने पूरे 600 रुपये वेटर को दे दिए। वहीं आदित्य की दूध वाली कॉफ़ी का बिल 800 रुपये बैठा था, तो आदित्य राणा ने पूरे 1000 रुपये दिए और वेटर से कहा कि 200 रुपये चेंज रख लो, देने की ज़रूरत नहीं है। वेटर खुश हो गया। इसी बीच वेटर ने सोचा कि जब इन साहब ने 200 रुपये छोड़ दिए तो फिर ये मैडम 50 रुपये क्यों लेगी, यही सोचकर वो जाने लगा। लेकिन तभी झलक ने वेटर को तुरंत रोकते हुए कहा, हेलो मिस्टर, मेरे 50 रुपये वापस दीजिए। ये सुनकर वेटर थोड़ा सा हैरान हो गया। आदित्य भी चौंक गया और बोला, मिस मल्होत्रा क्या कर रही हैं आप, सिर्फ 50 रुपये की ही तो बात है, आई थिंक आपको 50 रुपये छोड़ देने चाहिए। लेकिन झलक ने तेज़ नज़रों से आदित्य को घूरते हुए कहा, मैंने यहाँ सिर्फ 550 की कॉफ़ी पी है, तो मैं 50 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दूँ? ये पैसे मेरे और काम आएंगे, मैं इस तरह फालतू की खैरात नहीं करती। ये सुनकर आदित्य पूरी तरह हैरान रह गया। उसके सामने एक बिलीनियर लड़की बैठी थी जो सिर्फ 50 रुपये के लिए बहस कर रही थी। उसे ये बात बेहद अजीब लगी, क्योंकि उसने झलक को हमेशा एक घमंडी, पैसों में डूबी हुई लड़की समझा था, जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होने की वजह से उसके अंदर ईगो और घमंड भरा हुआ है। लेकिन यहाँ तो वो सिर्फ 50 रुपये के लिए वेटर से पैसे मांग रही थी। ये सब देखकर आदित्य को स्थिति थोड़ी अजीब लगने लगी। वेटर भी समझ गया था कि बात बढ़ सकती है, इसलिए बिना देर किए उसने तुरंत झलक को 50 रुपये लौटा दिए। वेटर अब थोड़ा घबरा गया था, इसलिए आदित्य द्वारा छोड़ी गई 200 रुपये की टिप भी उसने फटाफट वापस कर दी और आदित्य से बोला, सर आपकी बीवी तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, आपने उनसे बिना पूछे हमें 200 रुपये टिप क्यों दे दी? आपको पहले अपनी बीवी से पूछना चाहिए था। वेटर की ये बात सुनते ही झलक की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसे इस बात पर बेहद गुस्सा आ गया कि उस वेटर की हिम्मत कैसे हुई उसका नाम किसी आदमी के साथ जोड़ने की। लेकिन इससे पहले कि झलक कुछ कहती, आदित्य ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी ओर देखते हुए धीमे लेकिन सख्त स्वर में बोला, मिस मल्होत्रा, वो अनजान है, उसे हम दोनों को लेकर गलतफहमी हो गई है। आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आखिरकार हम सच्चाई जानते ही हैं, है ना? आदित्य की ये बात सुनकर झलक ने उसे एक तीखी नजर से देखा और बिना कुछ कहे वहां से बाहर जाने लगी। तभी अचानक एक बेहद छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई और सीधे झलक से टकरा गई। जैसे ही बेहद छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई और सीधे झलक से टकरा गई, झलक का संतुलन बिगड़ गया। उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। आदित्य ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। एक पल के लिए दोनों की नजरें आपस में टकराईं। हवा में अजीब सी खामोशी तैर गई। झलक ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। संभल कर नहीं चल सकती थी। झलक का लहजा सख्त था, लेकिन अगले ही पल उसने बच्ची की घबराई हुई आंखें देखी। बच्ची की पलकों पर आंसू थे, वो कुछ कह नहीं पाई। झलक के चेहरे की सख्ती एक सेकंड के लिए डगमगाई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आदित्य ये सब चुपचाप देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि झलक असल में है कैसी लड़की। एक तरफ 50 रुपए के लिए अड़ जाना, दूसरी तरफ किसी मासूम को देखकर आंखों में पल भर के लिए नरमी। बच्ची वहां से चली गई। झलक ने उसे तुरंत संभाल लिया और नरम आवाज में बोली थी, कैसे चल रही हो बेटा, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था। लेकिन तब तक वो छोटी सी लड़की माफी मांगती हुई वहां से सीधा उस वेटर के पास चली गई थी जो थोड़ी देर पहले आदित्य के लिए कॉफी लेकर आया था। उस बच्ची ने जाकर उसे गले से लगा लिया और मासूमियत से बोली, डैडी आज मेरा बर्थडे है और आपको मुझे मेरी फेवरेट फ्रॉक दिलानी है, और आप हैं कि अपना काम ही खत्म नहीं कर रहे, फिर कब तक यहां रहेंगे, चलिए ना घर चलते हैं। ये सुनते ही झलक के कदम वहीं ठहर गए। वहीं आदित्य अब थोड़ा सा फोन स्क्रॉल कर रहा था और फटाफट जाकर गाड़ी में बैठना चाहता था, लेकिन तभी झलक के कानों में वेटर की आवाज पड़ी,
बेटा आज सुबह से सिर्फ 2 ही कस्टमर आए हैं और उनमें से भी बस 1200-1300 रुपए की ही कमाई हुई है, और जो फ्रॉक तुम्हें पसंद आ रही है उसकी कीमत पूरे 2500 रुपए है। बेटा बस थोड़ी देर और रुक जाओ, जैसे ही 1-2 कस्टमर और आ जाएंगे तुम्हारी फ्रॉक का जुगाड़ हो जाएगा। अगर कल मैंने मकान की किस्त के पैसे ना दिए होते तो इस महीने कुछ पैसे जुड़ जाते। तुम्हें पता है ना बच्चा, दुकान का किराया भी देना होता है और किस्त भी। तभी वो छोटी सी बच्ची बड़ी समझदारी से बोली, कोई बात नहीं डैडी, आप आराम से काम करो, मैं तब तक वहीं खेल लेती हूँ और आपको काम करते हुए देखती रहूंगी, और मैं भगवान से प्रेयर करूंगी कि मेरे डैडी के पास बहुत सारे कस्टमर भेज दे। ये कहते हुए वो बच्ची सीधे एक कोने में रखी टेबल के पास खेलने चली गई। झलक ये पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख चुकी थी, लेकिन आदित्य उस वक्त गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे अब तक यही लग रहा था कि केवल 50 और 200 रुपए के लिए जिस तरह से झलक ने वेटर के सामने उसकी बात काटी थी उससे उसकी बेइज्जती हुई है। उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। वो तुरंत झलक के पास गया और उसे घूरते हुए बोला, मिस मल्होत्रा, आई थिंक हमें अब चलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है, और हाँ, आई एम सॉरी कि आपको मेरी वजह से कॉफ़ी पीने आना पड़ा और आपके सो कॉल्ड 550 रुपए खर्च हो गए। आदित्य ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि एक बिलियनेयर लड़की होते हुए भी झलक ने 50 रुपए के लिए उसे इस तरह वेटर के सामने नीचा दिखाया। उसे ये सब बेहद अजीब और अपमानजनक लग रहा था। फिलहाल उसने झलक से तेज आवाज में कहा, चलिए कहीं ऐसा ना हो कि आपका कुछ रुपयों का नुकसान हो जाए। ये कहकर वो वहां से जाने लगा, लेकिन झलक वहीं खड़ी रह गई। अब आदित्य सच में परेशान हो गया कि आखिर ये लड़की चल क्यों नहीं रही है, वो उसके साथ क्यों नहीं आ रही। तभी झलक चुपचाप वेटर की बेटी के पास जाकर खड़ी हो गई। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर बोली, हैप्पी बर्थडे बेटा, क्या आज सच में तुम्हारा बर्थडे है? ये सुनकर वो छोटी सी बच्ची खुशी से उछल पड़ी, हाँ दीदी आज मेरा बर्थडे है, लेकिन आपको कैसे पता चला? तब झलक ने प्यार से उस बच्ची को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मैंने तुम्हारी और तुम्हारे डैडी की बातें सुन ली थी। लेकिन बताओ तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की जगह यहाँ क्या कर रही हो? वो बच्ची भोले से चेहरे के साथ बोली, दीदी मैं कब से पापा से कह रही हूँ कि चलिए बर्थडे मनाते हैं, लेकिन पापा बोल रहे हैं कि अभी मेरी फेवरेट गिफ्ट दिलाने के पैसे नहीं है, इसलिए मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं यहाँ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे पापा के पास बहुत सारे कस्टमर आ जाए, फिर पापा मुझे मेरी पसंद की फ्रॉक दिलाएंगे, कितना मजा आएगा ना। उसकी मासूम बातें सुनते ही झलक की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने जल्दी से अपने आंखों पर चढ़े काले चश्मे को ठीक किया और बिना कुछ कहे अपनी पॉकेट से नोटों की एक गड्डी निकाली और बच्ची के हाथों में थमा दी, ये लो जाओ जाकर अपने पापा के साथ पार्टी करो, ओके? ये देखकर वो बच्ची खुशी से उछल पड़ी और झलक के गले से लग गई। उसने झलक के गाल पर एक किस भी कर दिया। वहीं वो वेटर जो अंदर ही अंदर परेशान था कि वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर पाएगा या नहीं, ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। वो जल्दी से झलक के पास आया और बोला,
मैडम जी, 50 रुपए के लिए तो आपने अभी मुझे डांट दिया था, फिर अचानक आपने मेरी बेटी को इतने सारे रुपए दे दिए, ये तो कम से कम 50,000 होंगे। ये सुनकर झलक हल्की सी मुस्कुराई और बोली, जो मेरे पैसे थे वही मैंने आपसे मांगे थे, और ये मेरी तरफ से आपकी बेटी के बर्थडे का गिफ्ट है। आई होप आप अपनी शॉप बढ़िया से बंद करके अपनी बेटी का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। ये कहकर झलक उठी और सीधा बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गई। वहीं आदित्य पूरी तरह स्तब्ध खड़ा रह गया। उसने आज तक हर तरह की औरतें देखी थी, लेकिन आज जो औरत उसके सामने थी उसे देखकर उसके विचार पल पल बदल रहे थे। थोड़ी देर पहले जहां वो बेहद गुस्से में था, वहीं अब झलक के इस बर्ताव को देखकर उसे एक अजीब सी प्राउड वाली फीलिंग हो रही थी। वो सोचने लगा, ये लड़की आखिर है क्या जो 50 रुपए के लिए लड़ जाती है और 50,000 रुपए एक पल में किसी छोटी बच्ची की खुशी के लिए दे देती है। आखिर कौन हो तुम झलक मल्होत्रा? जितना तुम्हारे बारे में सोचता हूँ उतना ही कन्फ्यूज हो जाता हूँ। कभी लड़ाकू, कभी बिजनेस माइंडेड, कभी फाइटर। आदित्य के दिमाग में सवालों की एक लंबी कतार चल रही थी। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, आप जितनी बाहर से सख्त दिखती हैं उतनी है नहीं। झलक ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ठंडक थी, आवाज में दूरी। मिस्टर राणा प्लीज, मुझे जज करने का हक आपको नहीं है। मैं जज नहीं कर रहा, आदित्य थोड़ा आगे बढ़ा, मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। समझने की जरूरत नहीं है, झलक ने तुरंत काटते हुए कहा, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। आदित्य ने एक कदम और बढ़ाया। अब दोनों के बीच की दूरी बेहद कम रह गई थी। तो फिर आप बताइए, उसने सीधी नजर से देखते हुए कहा, एक इंसान जो करोड़ों की ज्वेलरी को मामूली समझता है वो 50 रुपए के लिए क्यों लड़ता है? झलक की आंखें एक पल के लिए हिली, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक छू लिया गया हो। उसने गहरी सांस ली, क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं जब 50 रुपए भी मेरी जरूरत हुआ करते थे। उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था, लेकिन चेहरे पर अब भी कंट्रोल। आदित्य कुछ नहीं बोला। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ घमंड नहीं बल्कि किसी गहरे संघर्ष की परछाई भी है। झलक ने अपनी घड़ी की ओर देखा, अब मुझे देर हो रही है। वो मुड़ी और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। आदित्य वहीं खड़ा रहा, उसकी नजरें झलक की पीठ पर टिकी थीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, ये लड़की आखिर है कौन? और वहीं झलक के दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, ये आदमी जरूरत से ज्यादा करीब आ रहा है।